الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں ہم مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم کی کتاب دین قرآن میں سے کار سے خوبیت کا موضوع پڑھ کے مکمل کر چکے ہیں. یہ موضوع ذیلی موضوع تھا، یعنی سب ایک موضوع چل رہا تھا کس کا، کہ قرآن مجید کی تفسیر میں گمراہی کے اسباب، کن کن وجوہات سے قرآن مجید کی تفسیر جو لوگ کرتے ہیں وہ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک تھا، بلکہ یہ ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. کیونکہ جس طرح پیچھے بھی یہی معاملہ چل رہا تھا کہ پہلے حضرت جو ہے وہ ایک جو ہے سپر سیٹ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سے ایک سب سیٹ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے علماء کی اجارہ داری، یہ ایک عمومی موضوع تھا، اور پھر اس کے اندر حضرت نے ایک خصوصی، کسی کا ایک خصوصی جز بیان کیا مزید تفصیل کے ساتھ، کہ علماء اور پاپائیت، ٹھیک ہے، دین اسلام کے علماء اور پاپائیت. یہ اصل میں وہی علماء اور اجارہ داری ہی والا کانسیپٹ تھا، جس کو کہ خاص ایک، پھر اسی طریقے سے پھر جو اگلا تھا کہ قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع کرنا، گمراہی کا اگلا سبب اپنے نظریات کے تابع کرنا. تو اپنا نظریہ کیا ہوتا ہے انسان کا؟ کوئی پیدائشی طور پہ کوئی نظریہ لے کر کے نہیں آتا انسان، ٹھیک ہے، کوئی فلسفی لے کر کے نہیں آتا، کوئی تہذیب سے ایفلیشن لے کر کے کوئی پیدائشی طور پہ دنیا میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. سوائے کیا ایک چیز پیدائشی طور پہ لے کر کے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ادراک، اپنے خالق، اپنے رب کی موجودگی کا ادراک، احساس. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر پیدا کر دیا ہے، بس وہ ایک یہ چیز لے کر کے آتا ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر ایکوائر کرتا ہے اپنے ماحول سے. تو پھر نظریات کے تابع ہونے سے مراد کون سے والے نظریات؟ جو اس نے ایکوائر کیے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد سے، ماحول سے، جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا تھا ماحول، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ زمانے کے افکار ہوتے ہیں، جو زمانے کے اندر پری ڈومیننٹ، ٹھیک ہے، زیادہ جو رائج اور سکہ رائج الوقت قسم کے جو افکار ہوتے ہیں، تو ان سے جو ہے نا وہ اگر مرعوب ہو گیا تو پھر وہ اس کی قرآن مجید کی تفسیر میں بھی پھر وہ افیکٹ کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. اب اسی کا ایک ذہنی موضوع، یعنی اسی کا ایک سب موضوع ہے معجزات کا مسئلہ، ٹھیک ہے. یہ معجزات کا مسئلہ بھی اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے، زمانے کے افکار سے مرعوبیت. یہ اسی کا ایک سب ٹائٹل ہے، سب ڈسکشن، ٹھیک ہے. امید ہے کہ سب کو یہ کانسیپٹ واضح ہو رہا ہوگا کہ حضرت نے کس طریقے سے پہلے بڑا موضوع، پھر اس کے بعد اسی کے اندر سے ایک چھوٹا موضوع، اسی کے اندر پھر بڑا موضوع، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا موضوع، پھر بڑا موضوع، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا موضوع، ٹھیک ہے. بلکہ یہ تو تین لیول، تیسرا لیول ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ زمانے کے افکار سے مرعوبیت یہ سب سے بڑا موضوع تھا، پھر اس کے اندر سب سے پہلے کیا تھا کہ قرآن کو اپنے نظریات کے تابع کرنا، یہ سب سے بڑا موضوع تھا. پھر اس کے اندر زمانے کے افکار سے مرعوبیت، یہ چھوٹا موضوع تھا. پھر اس کے اندر معجزات کا مسئلہ، یہ اس کے اندر کا ایک چھوٹا موضوع ہے، ٹھیک ہے. یعنی سرکل، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سرکل، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سرکل. تو اس میں حضرت لکھتے ہیں سب پیج نمبر 379 کے اوپر، کہ یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی، معجزات کا مسئلہ، ٹھیک ہے. یعنی معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزے کی تعریف بھی ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے کہ معجزہ ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو کہ دنیا میں جو اسباب کا نظام چل رہا ہے، یا دنیا میں جو आम राइज तरीका होता है कोई काम करने का, उससे हट करके कोई काम करना, ठीक है, उससे हट करके या असबाब के निजाम को सस्पेंड करके, उसको कैंसिल करके, उसको फाड़ करके, उसको खत्म करके अगर कोई काम किया जाए, तो ऐसे काम को तीन अल्फाज से याद किया जाता है। ऐसे ऐसे काम को जो है वो तीन टाइटल्स दिए जाते हैं या तीन उनवान दिए जाते हैं। एक उनवान है मोजजा, दूसरा उनवान है करामत, और तीसरा उनवान है इस्तिदराज। मोजजा, करामत, इस्तिदराज, तीनों का एक ही मानी है, सिवाय इसके के फर्क इन तीनों में क्या है कि मुआजा उसको इस वक्त कहते हैं कि जब ऐसा काम किसी नबी के हाथों पर हुआ, किसी नबी ने किया हो तो उसको मुआजा कह देते हैं। अगर किसी वली ने किया है, यानी नॉन नबी लेकिन नेक पाकीजा इंसान उसने किया हो, जो कि अल्लाह ताला का वली ऐसा ही इंसान होता है, अल्लाह इन अवलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, ठीक है ना। कौन है अल्लाह के अलिया? जो ईमान लेकर के आए नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर और उन्होंने तक्वा इख्तियार किया, यही अल्लाह ताला के वली होते हैं। तो वली के हाथ पर अगर कोई ऐसा खरक आदत, इसको खरक आदत का भी टेक्निकल इस्तेलाह दी जाती है, वली के हाथ पे हो तो उसको करामत कहते हैं। और अगर ऐसा काम किसी फासिक यानी खुलकर गुनाह करने वाला या काफिर के हाथ पर हो तो फिर उसको इस्तिदराज कहते हैं, इस्तिदराज, ठीक है। यहां पर हम मौजजात का यानी नबी के हाथ पे जो काम हुए हैं उनका मसला डिस्कस कर रहे हैं कि उससे कुछ लोगों को मसला कि भाई ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया वगैरह। तो हजरत फरमाते हैं कि ये बात एक मिसाल से वाजह होगी। जब मगरब के मशहूर फलसफी न्यूटन, क्या नाम था इसका, इसहाक न्यूटन, आइजक, आइजक जो है ये अंग्रेजी जुबान में इसहाक को कहा जाता है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, ठीक है। तो ये था इसहाक न्यूटन, ठीक है। तो आइजक न्यूटन ये मगरब के मशहूर फलसफी, ये फिलोसोफर, क्योंकि उस वक्त तक जो है ना ये जो मॉडर्न साइंस है ये डेवलप नहीं हुई थी। उस वक्त तक पुराना फलसफा जो यूनानी फलसफा कहलाता था, ग्रीक फिलोसफी, ठीक है, वही चल रहा था। तो इस वजह से जो जरा इस किस्म की बातें करते थे साइंटिफिक वगैरह, तो उनको फिलोसोफर ही कहा जाता था, ठीक है। तो इस वजह से हजरत ने इसको फलसफी लिखा है, साइंसदान नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से ये ट्रांजिशनिंग पीरियड था, ट्रांजिशनिंग टाइम था फ्रॉम फिलोसफी टू मॉडर्न साइंस, जिसमें जिस वक्त जो है ना ये न्यूटन दुनिया में आया था, 17वीं सदी का यानी 1600s का जो टाइम था। तो उसने 17वीं सदी में कानून तजाजुब का इनकशाफ किया। तो ये लफ्ज जो है ना वो मैं, सुभान अल्लाह, तजाजुब, जज्ब। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो उसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं साइंस में, जिन्होंने जिन्होंने साइंस अंग्रेजी में पढ़ी है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो इसका लेकिन जज्ब से ये जो है ना कुदरतन अजीब जहन सी निकल गई है वाली बात, इसको और ही नहीं किया इसके ऊपर, मैं इसको कुछ तलाश करने की कोशिश करी कि कानून तजादुब जो है वो उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है अंग्रेजी में। बहरहाल तो बैर जो भी इसने इंकशाफ किया उसका ना, इतनी यानी इसने पर्दा उठाया उसके ऊपर से, एक छुपी हुई चीज थी लोगों को अब तक नहीं पता पता थी, तो उसने उसके ऊपर से पर्दा उठाया, लोगों को एक्सप्लेन किया वाली बात। तो इस कायनात और इसमें पाई जाने वाली हर चीज के बारे में एक नजरिया मकबूल आम हो गया, जिसे मैं तजाजुब, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अच्छा जजाकुमुल्लाह, बहुत आपने मदद फरमाई, ग्रेविटेशन, हाँ, जज्ब करना, ठीक है, अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, बड़ी बिकॉज रिसेंटली जो है ना बड़े बिल्कुल हाल ही में हमारे साथियों के साथ जो है वो डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर चल रही है कि ग्रेविटी लॉ के बारे में भी जो है ना वो एक डिफरेंट नजरिया आ गया है कि अब ये जज्ब का मामला नहीं है बल्कि ये उसका है, पुश करने का मामला है, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट कोई रिसर्च आई है, उसके अभी हमने तफसील पढ़ी भी नहीं है। बहरहाल तो ये तजाजुब यानी ग्रेविटी लॉ या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, तो एक नजरिया मकबूल आम हो गया जिसे मैकेनिकी, मैकेनिकी नजरिया हयात कहते हैं, मैकेनिकल, ठीक है। तो सादा लफ्जों में उसका खुलासा ये है कि ये पूरी कायनात इल्लत और मालूल के निजाम में, इल्लत और मालूल क्या कहते हैं इसको, कॉज एंड इफेक्ट, एवरी इफेक्ट हैज टू हैव ए कॉज, कोई कॉज होगा तब कोई इफेक्ट होगा जो उसको इफेक्ट कर सकता है, ऐसा कोई कॉज होगा तभी काम होगा, वरना काम नहीं हो सकता, वरना इफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सादा लफ्जों में उसका खुलासा यह है कि ये पूरी कायनात इल्लत और मालूल, कॉज एंड इफेक्ट के निजाम में इस तरह जकड़ी हुई है कि इससे सिर मुंह तजावुज नहीं कर सकती, ठीक है ना, जरा बराबर भी तजावुज नहीं कर सकती, ना उधर जा सकती है, ना इधर जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, बस इट इज बाउंड बाय दिस लॉ। यहां पाई जाने वाली हर चीज की एक एक फितरत या नेचर है जो उसके लिए लाजिम जात है। ठीक है, ये तो दीन में भी ये नजरिया है। ठीक है, अल्लजी कद्दरा फहदा, कद्दरा, ये कद्दरा का मतलब क्या कि अल्लाह ताला ने हर चीज की एक तकदीर बना दी, एक चीज सेट कर दी। अब वो तकदीर में खाली ये नहीं है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, बल्कि तकदीर में ये बात भी शामिल है कि उसकी क्या फितरत होगी, उसकी क्या नेचर होगी, उसका क्या अमल होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, ये भी उसकी तकदीर के अंदर शामिल है, हर चीज की तकदीर में शामिल है। ठीक है, तो यहां तक तो बात सही है कि हर चीज की एक फितरत या नेचर है, लेकिन ये बात कि वो उसके लिए लाजिम जात है, उसकी जात के साथ ये लाजिम है, निकल नहीं सकती उससे और कभी उससे अलग नहीं हो सकती। मसलन आग की फितरत ये है कि वो हमेशा जलाएगी, इस तरह फितरत का उससे अलग होना मुमकिन नहीं है, चुनाचे ये कभी भी नहीं हो सकता कि आग मौजूद हो और उससे जलाने की खासियत खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बात शुरू हुई और ये कॉज एंड इफेक्ट तक पहुंची, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह भी इसके अंदर शामिल हो गए, और इससे क्या दुनिया के अंदर ये तस्वर फैल गया कि दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। ठीक है, जब पूरी दुनिया में इस नजरिए का डंका बजना शुरू हुआ तो मगरब के मुफक्किरीन ने ऐसे तमाम वाकयात का मजाक उड़ाना शुरू किया जिन्हें वो मा फौकुल फितरत यानी सुपर नेचुरल समझते थे। ठीक है, पूरी दुनिया में डंका कैसे बजना शुरू हो गया, उस जमाने में कोई व्हाट्सएप था, फेसबुक था, सोशल मीडिया था, इंटरनेट था, टेलीविजन स्टेशंस थे, कुछ भी तो नहीं था। फिर ये जो यूरोप से ये नजरिया, न्यूटन साहब जो कि इंग्लैंड के एक साहब थे, इंग्लैंड में रहने वाले, राइट, और ये ईसाई माँ बाप की औलाद थे, इसके बाप का नाम भी आइजक न्यूटन ही था, लेकिन इसकी पैदाइश से पहले वो उसका इंतकाल हो गया था, तो शायद माँ ने इस वजह से बाप की याददाश्त के तौर पर जो है ना इसका नाम, यादगार के तौर पर इसका नाम भी आइजक न्यूटन रख दिया। तो ये जो था ये एक यानी एक ऑर्थो क्या कहते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन ही होगा, चर्च के साथ जो है वो उसका ताल्लुक था, लेकिन बड़े होने के बाद जो है ना जब इसने पढ़ा चर्च के ऑर्डर्स को, उसके चीजों को, तो इसने जो है ना वो ट्रिनिटी का इनकार कर दिया। ठीक है, कि ये जो ये गॉड सन और मदर या होली स्पिरिट ये सब जो है ना, ये सब ये तीन तीन है, खुदा तीन है और तीन खुदा हैं और ये ट्रिनिटी कहलाता है, तो ट्रिनिटी का इसने नहीं, ये कोई चीज नहीं। ठीक है, और इसने जो है ना वो एक तरह से खामोश बगावत भी कर दी, यानी इसने खुल करके कोई तंजीम वगैरह नहीं बनाई चर्च के खिलाफ, लेकिन इसके प्राइवेट जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये है कि इसने जो है ना वो चर्च के सिस्टम को जो है वो छोड़ दिया, खैर बात कह दिया। ठीक है, वैसे इसकी जो क्वालिफिकेशन जो आती है ना, इसके टाइटल्स, उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि साइंसदान था, बल्कि थियोलॉजियन, थियोलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है कि जिसमें रिलीजन वगैरह को पढ़ना, उनके बारे में जो है वो लिखना, उनके बारे में अफकार वगैरह करना, ये थियोलॉजियंस ये काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि उर्दू में क्या कहते हैं इनको, मजहबी मुफक्किर। ठीक है, तो ये थियोलॉजियन भी था, ये खाली कोई लैब में बैठ करके जो है ना वो केमिकल्स को और फिजिसिस्ट, इस किस्म की खाली चीज नहीं थी। ठीक है, तो इसने ये थ्योरी पेश करी जिस थ्योरी को फिर पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, बगैर इंटरनेट के कैसे फैल गई, क्योंकि ये वो जमाना था जबकि दुनिया के अंदर जो राइज निजाम था और सुपर पावर थी उन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया था। वो लग गए थे कबाब, शराब, ठीक है, और रक्स व मौसीकी के अंदर, या ये जो है वो लफाजी के अंदर, थ्योरी के अंदर, और शेर व शायरी के अंदर, और कबूतरबाजी के अंदर, और बैतबाजी के अंदर, और फलाना बाजी के अंदर, ढिमकाना बाजी के अंदर, ये मुसलमान कौम जो है वो इसके अंदर लग गई थी। ठीक है, तो उसने जो है ना फिर दीन का काम छोड़ दिया ना, अपने 5 फट या 6 फट के जिस्म के ऊपर दीन को अप्लाई करना, ना जो है वो अपने माहौल मुआशरे के ऊपर अल्लाह के दीन को अप्लाई करना, ना जो है वो दुनिया के अंदर दीन को अप्लाई करना। तो ये तो उसका मकसद ज़िंदगी था, वो उसने छोड़ दिया। उसको जिस मकसद से अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इज्जत दी थी, जिस वजह से इज्जत दी थी, और फिर जो मकसद उसने पूरा करना था, वो ख़त्म हो गया। अब असल में तो कायनात का जो चलाने वाला है वो अल्लाह है। तो उसने सजा के तौर पर, क्योंकि अल्लाह ताला का तो ये निज़ाम, ये कॉज एंड इफेक्ट के निज़ाम से ज़्यादा बड़ा निज़ाम है, कि मैं ये अमल सु युजा भी, तुम बुरा काम करोगे तो तुम्हें उसकी जजा मिलेगी। ठीक है, तो जब इत्तेफाकी जो यानी इज्तिमाई शक्ल में मुसलमानों ने ये काम छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ख्वाब गफलत में सुला दिया, मैदान खाली हो गया। और जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने उस वाले मकाले के अंदर भी लिखा है, तजद्दुद वाला जो मकाला है, कि जब ये यूरोपियन अकवाम गारों से बाहर निकली, क्योंकि ये उनके डार्क एजेस थे, इंतहाई गलाजत में जिंदगी गुजारते थे, यानी इनका मुंह धोने का न, आपने कभी देखा है वो पुराने जो घरों में सिंक लगे होते थे? हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सिंक पहले भी नहीं लगे होते थे, लेकिन हमने दूसरे मुल्कों के अंदर देखे, तो वो जो एक सिंक होता है ना, जिसके अंदर आप वॉश बेसिन भी जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो दो नलके लगे होते हैं, वो ये गर्म पानी का और ठंडे पानी का, और नीचे जो है ना वो एक कॉर्क होता है, उस कॉर्क से आप जो है उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना मुंह कैसे धोते थे, कि उसी गंदे पानी यानी पानी से जो है वो उठा उठा करके अपने मुंह को मारते थे, और फिर वही गंदा पानी जो नीचे गिरता था उसी गंदे पानी से दोबारा अपने मुंह को धोते थे। ठीक है, तो ये यानी ये तो बड़ी छोटी सी एक बहुत ही बचकाना किस्म की एक मिसाल आपको दे दी है, लेकिन ऐसे, ठीक है ना, जैसे आजकल भी मशहूर है ना कि ये बस वो परफ्यूम लगा करके, और वरना गलाजत जो है वो तो सफाई वगैरह तो उनको करनी नहीं होती, ना इनको कुछ अता पता है सफाई करने का, तो परफ्यूम इंडस्ट्री को उन्होंने बड़ी तरक्की दिया ताकि जो है वो बदबू ना आए। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान भी आजकल वैसे ही गंदे होते हैं जैसे कि काफिर गंदे होते हैं। तो ये तो इनकी असलियत है। बस ये जब अंगड़ाई लेके बाहर निकले तो हुआ ये कि पूरा का पूरा मैदान जो है वो खाली था, कोई भी इनका रास्ता रोकने वाला था नहीं था, तो इन्होंने जो है वो फतुहात करनी शुरू करी, और देखते ही देखते पूरी दुनिया के ऊपर छा गए। ठीक है, तो इस तरह से जब ये छा गए तो इन्होंने जिन नजरियात को कबूल किया हुआ था वो नजरियात भी छाने शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि वो नजरियात तो इंसान के जहन में होते हैं, वो इंसान के जहन के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो पूरी दुनिया में उस नजरिए का डंका बजना शुरू हुआ, तो मगरब के मुफक्किरीन ने ऐसे तमाम वाकयात का मजाक उड़ाना शुरू किया जिन्हें वो मा फौकुल फितरत, यानी फितरत के ऊपर, फौक यानी फितरत से हट करके, असल में फौक का मतलब यहाँ पर हट करके लिया जाएगा, और उसको अंग्रेजी में सुपर नेचुरल कहते हैं, और जो उनके दरियाफ्त किए हुए इल्लत और मालूल के नजरिए के खिलाफ थे, चुनाचे उन्होंने हर उस चीज को तवहम परस्ती करार दे दिया, वहम वहम करार दे दिया। यानी ये वहम क्या चीज होती है, जो जिसका कोई यकीन ना हो, जिसको कि आप जो है ना वो एम्पिरिकल एविडेंस से या ऑब्जर्वेशन से प्रूव ना कर सकते हो, तो ऐसी चीज जो होती है ना वो वहम कहलाती है। ठीक है, तो ये साइंस में इसको वहम कहते हैं, तो कंजेक्चर भी कह सकते हैं, या इसको जो है वो ऐसी बस इमेजिनरी किस्म की चीज है, हर ऐसी चीज को तवहम परस्ती करार दे दिया जो आदि असबाब के मातहत वाक़ ना हुई, यानी इस कॉज और इफेक्ट के सिस्टम के मातहत रह करके वाक़ ना हुई हो। इस नजरिए की घन गरज और इससे ज्यादा मा फौकुल फितरत अशिया के इस्तेहजा ने आलम इस्लाम के बाज मुतजद्दिदीन को भी, यानी जो लोग तजद्दुद के रास्ते पे चले हुए थे, उनको भी इंतहाई मरूब व मुतासर कर दिया। ठीक है, यानी जिन लोगों की यकीन के साथ उनका ताल्लुक कच्चा था। ठीक है, यकीन क्या है, सर्टेंटी क्या है, कुरान मजीद, अल्लाह का कलाम। ठीक ठीक है, और अल्लाह के कलाम की जो तशरीहात हैं जो कि अल्लाह के रसूल ने पेश करी हैं, ये यकीनी बात, ये यकीन है। तो जिनको यकीन नहीं था इनके ऊपर, जिनका यकीन के साथ ताल्लुक कमजोर था, नस्बत कमजोर थी, तो वो फिर दूसरी चीजों में यकीन तलाश करते थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मुतजद्दीदीन कहा जाता है। तो उनको इंतहाई मरूब मुतासिर कर दिया। और जब उन्होंने देखा कि कुरान करीम में अंबिया अलैहिस्सलाम के बहुत से मोजज़ात मजकूर हैं जो इस नज़रिए से मेल नहीं खाते, ठीक, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक आइडियोलॉजी, ठीक है, तो उन्होंने कुरान करीम के अल्फाज में ऐसी खींचतान शुरू कर दी जिससे ये सारे मोजज़ात अहले मगरिब की इस्तेलाह में माफाउकुल फितरत या सुपर नेचुरल होने के बजाय आदि असबाब के मातहत आ जाएं। ठीक है, यानी कुरान मजीद में इस किस्म के जो वाकयात हैं, पानी जो है ना वो बीच में से पूरा समंदर फट गया और जो है उसमें से रास्ता बन गया, समंदर के कैसे रास्ता बन सकता है भाई, ठीक ना, ये समंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो 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 वेव्स हैं, जो बेसिकली कॉम्प्राइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऐसे स्ट्रेट कैसे खड़े हो सकते हैं दीवार की शक्ल में। ठीक है, तो ये सब ये मूसा अलैहिस्सलाम का मुआवजा था, वो फलाने नबी का मुआवजा था, ये फलाने नबी का मुआवजा था। इन्होंने कोशिश शुरू कर दी मुतजद्दीदीन ने कि इनको भी जो है ना वो कॉज एंड इफेक्ट के अंदर ही किसी तरीके से फिट किया जाए। ठीक है, मसलन इल्लत व मालूल के मजकूरा बाला नजरिए के मुताबिक जलाना आग की लाजमी खासियत थी जो कभी उससे जुदा नहीं हो सकती, लेकिन कुरान करीम ने वाज़ह अल्फाज में बयान किया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उनके लिए आग को ठंडा कर दिया गया। चुनाचे आलम इस्लाम के बाज़ तजद्दुद पसंद लोगों ने इस वाक़े ही से सिरे से इनकार कर दिया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, और इस गर्ज़ के लिए कुरान करीम की वाज़ह आयतों में ऐसी खींचतान शुरू कर दी जो कुरान की मानवी तहरीफ की हद तक पहुंच गई, मानवी तहरीफ की हद तक पहुंच गई। ठीक है, कि इसका जो मानी साबित हैं कुरान से, हदीस से, सहाबा किराम के आसार से, तो उन्हीं में तहरीफ यानी उसको तब्दीली। और जो 1300 साल के अरसे में कुरान और सुन्नत के किसी आलिम के वहमो गुमान में भी नहीं आई थी वाली बात। ठीक है, और पूरी उम्मत के बरखिलाफ आयात कुरानी की इस तहरीफ मानवी का जवाज पैदा करते हुए सर सैयद अहमद खान ने लिखा। किसने लिखा? सर सैयद ने लिखा कि उनके कदीम उलमाए इस्लाम के ज़माने में, यानी उनके यानी कौन, कदीम उलमाए इस्लाम के ज़माने में नेचुरल साइंसेज ने, ये सीन्स जो लिखा है ये असल में साइंसेज इसको पढ़ा जाएगा, तो लिखने वाले ने आदमी ने इस तरह से कर दिया, ने तो ऐसे नहीं लिखा होगा या ऐसे नहीं कहा होगा, तो नेचुरल साइंसेज ने तरक्की नहीं की थी उनके ज़माने में, यानी सहाबा कराम के ज़माने में, अम्बिया के ज़माने में, और कोई चीज़ उनको कानून फितरत की तरफ रुजू करने वाली और उनकी गलतियों से मुतनब्बे करने वाली नहीं थी। ठीक है, कहाँ पे लिखा है? मुकद्दमाए तफसीर कुरान अज सर सैयद अहमद खान, सफा 17, जिल्द अव्वल। ठीक है, तो वहां से देते हैं, यहाँ पे कोट किया कि यानी नबियों का जो नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला, जो नबियों से गलती हुई तो कोई उनकी गलती की इसलाह करने वाला ही नहीं था। ठीक है, बस ये असबाब और मिसल उनके और बहुत से असबाब ऐसे थे कि उनकी तवज्जो, काफ़ी तवज्जो कुरान मजीद के उन अल्फाज की तरफ नहीं हुई, यानी सफिशेंट तवज्जो जो है ना वो इन अल्फाज की तरफ नहीं हुई। मसलन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में कोई नस से सरीह इस बात पर नहीं है कि दर हकीकत उनको आग में डाल दिया गया था, मगर उन्होंने इस बात पर ख्याल ही नहीं की। ठीक है ना, तवज्जो ही नहीं दी उन्होंने इस वाली बात के ऊपर, दे डिड नॉट पे अटेंशन नाउज बिल्ला। ठीक है, कदीम उलमा इस्लाम यहाँ पे, तो आगे हजरत लिखते हैं कि हालांकि अहदीस व रिवायात से कतः नजर खुद कुरान करीम के अल्फाज इस वाक़े से मुतअल्लिक़ हैं। ठीक है, यानी खुद अरबी जुबान के अल्फाज ही इसके बारे में सराहतन बता रहे हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कालू उन लोगों ने कहा, वो जो वहां पे नमरूद के साथ मुशरिकीन जो होते थे उन्होंने कहा, हर्रिकूहू इसको जला डालो, वंसुरु आलिहतकुम और अपने माबूदों की मदद करो, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम कुछ करने के काबिल हो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना, तो ये काम करो, इसको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। कुलना या ला रुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा कि ए नार तुम हो जाओ ठंडी और सलामती वाली इब्राहिम के ऊपर। वह अरादु बिही कैदन, और इन्होंने इरादा किया उसके साथ अपना यानी कैद करने का, मंसूबा बनाने का इन्होंने इरादा किया। फजअलनाहुमुल अखसरीन, और हमने उनको बना दिया सबसे ज्यादा खसारे में पड़े हुए लोगों जैसा। ठीक है, तो ये कुरान मजीद के सरी अल्फाज है, इसमें आप जो है वो क्या तहरीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कालुबनू लहू बुनियानन फअल्कू हू फिल जहीम, तो उन लोगों ने कहा कि इब्राहिम के लिए एक इमारत बनाओ, बुनियाना इमारत बनाओ और उसे दहकती हुई आग के अंदर फेंक दो। जहीम का तर्जुमा जो है वो दहकती हुई आग, क्योंकि दुनिया की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो दुनिया में एक आग बनाना। फअरादु बिही कैदन फजअलनाहुमुल असफलीन, इस तरह उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक बुरा मंसूबा बनाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें असफल कर दिया, सबसे नीचा उनका मुंह बिल्कुल खाक में मिला दिया उनके इस मंसूबे को। इन वाजह और सरी अल्फाज पर तहरीफ व तावील की मशक सितम सिर्फ इस बिना पर की गई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से जिंदा सलामत निकल आने का यह वाकया मगरब के राइज उल वक्त नेचुरल साइंसेस के खिलाफ, राइज उल वक्त उस वक्त जो राइज थी नेचुरल साइंसेस, तो उसके खिलाफ था। चुनाचे सर सैयद अहमद खान और उनके हम नवा दूसरे तजद्दुद पसंदों ने मगरब की इस नेचुरल साइंस की खातिर ना सिर्फ तफसीर कुरान के तमाम उसूलों को पामाल किया और कुरान करीम के अल्फाज में खींचतान शुरू की, बल्कि इस्लाम के बुनियादी अकायद में से मआद जिस्मानी जैसे अकायद पर भी खत नस्ख फेर दिया, मनसूख कर दिया, यानी ऐसा वो जिसको कहते हैं ना लाइन थ्रू, बिल्कुल उसके थ्रू जो है ना वो काट काट दिया उसको। ठीक है, किसको काट दिया कि इस्लाम के जो बुनियादी अकायद में से एक अकीदा क्या है, माद जिस्मानी। माद कहते हैं लौटने की जगह, और जिस्मानी का मतलब क्या कि कयामत के दिन जो हम लौटाए जाएंगे जिंदगी की तरफ, तो वो जिंदगी जिस्मानी जिंदगी होगी, सिर्फ रूहानी जिंदगी नहीं होगी कि रूह जो है वो कोई फिलोसॉफिकल तरीके से, कोई इमेजिनरी तरीके से, बस रूहें जो है ना वो यानी एक गोया के ख्वाबो ख्याल के अंदर ये मामला हो रहा है, कोई फिजिकल उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। नहीं, मआदे जिस्मानी का बुनियादी अकीदा यह है कि बाकायदा इंसान हम जिस जिस्म के साथ दुनिया के अंदर मरेंगे और फिर हमें कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा, और कब्र में अगर हम इतने नेक नहीं हुए कि कब्र में जो है वो हमारे जिस्मों की हिफाजत की जा रही है, तो जिस्म जो है वो गल सड़ करके बिल्कुल यानी हर चीज खत्म हो जाएगी, हत्ता कि हड्डियां भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और फिर कोई जो है वो लो बैक का कोई हड्डी का टुकड़ा बच जाएगा, या ये कि खाली जो है ना वो एक सेल बच जाएगा हमारा। ठीक है, अल्लाह ताला उसी सेल से पूरी के पूरे जिस्म को जो कि हम इस दुनिया में दिए फिरते हैं उसको रिक्रिएट करवाएंगे, और इस जिस्म के बनने के बाद जो है वो मुर्दे बाकायदा अपनी कब्रों से निकलना शुरू होंगे, जहां कहीं भी उनका ये जिस्म मौजूद था वहां से वो निकलना शुरू होंगे जो उनकी कब्र कहलाता है। ठीक है, तो ये माद जिस्मानी जैसे अकायद पर भी खत नस फेर दिया, नहीं नहीं ये भी नहीं, ये भी कुछ नहीं हो सकता। मलाइका शयातीन और जिन्नात को भी तवहम परस्ती करार दे दिया, यानी मलाइका फरिश्ते, ये कहा जी बस वो इंसान का अपना जो एक अच्छाई का नजरिया होता है ना, अच्छाई का जो उसकी फिक्र होती है, उसके अंदर जो अच्छाई का मादा होता है, वही फरिश्ते हैं, फरिश्तों की अपनी अलग कोई वजूद ही नहीं है। और शयातीन क्या है, वो जो बुराई का मादा होता है इंसान के अंदर, वही शयातीन है, वरना शयातीन जो है वो कोई जिन तो कोई चीज ही नहीं होती और कोई अलग वजूद है ही नहीं इन मखलूकात का। ठीक है, तो इनको भी तवाहुम परस्ती करार दे दिया। अंबिया अलैहिस्सलाम के तमाम मोजिजात को मा फौकुल फितरत कहकर उनके मुनकर हो गए, इनकार कर दिया कि जी ये सारे मोजिजात जो है ये नहीं हो सकते, और इस गर्ज के लिए पूरे कुरान को शायराना तमसीलात का मजमुआ बना करके रख दिया। ठीक है, कि भाई अब जब ये सारी चीजें जो है वो कोई एक रियलिटी ही नहीं रखती, तो अब तो ये कोई शायराना तमसीलात ही है ना, बुत कदाए तसव्वुरात, अल्लामा इकबाल कह के चले गए दुनिया से। जाहिर है इनके पास तो इश्क विश्क और भी नहीं था, एक तो हमारे पास भी वैसे कोई खास नहीं है, लेकिन इनके पास तो बिल्कुल ही नहीं था, तो बुद्ध का तस्वुर आता। ठीक है, तो एक शायराना तमसीलात का मजमू बना के रख दिया। ऐसे लोगों की तफसीरें देख कर मालूम होता है कि जैसे कुरान करीम ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के तमाम वाकयात अपने सीधे साधे असलूब के बजाय तमसीलात के मुअम्मों में बयान किए। तमसीलात के मामले यानी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड किस्म के सिमिलिट्यूड्स यानी अजीब और गरीब किस्म के फलसफे की किताब आप पढ़ें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी ना, तो कुरान उसी तरह की एक किताब बन गई। हालांकि कुरान का ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, कुरान मजीद में जो अहकाम का मामला है तो वो अहकाम भी हदीस मुबारक से वाजे हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो तो वैसे ही वाजे हैं, जो जन्नत जहन्नुम और पुरानी कौमों के जो वाकयात हैं अच्छे हैं या अजाब के वाकयात हैं, सारी चीजें जो है वो सिंपल है। ठीक है, तो इन्होंने तो ऐसा बना दिया यानी अनएक्सेसिबल। ठीक है, तो जिनका इंकशाफ 1300 साल बाद पहली बार इन फिदायान मगरिब पर हुआ है, यानी मगरिब पर फिदा होने वाले जो ये हजरात है ना, इनके ऊपर 1300 साल गुजरने के बाद ये इंकशाफात हुए। तो कुरान करीम के वाज़ह और सरीह लफ्ज़ को मन माने मजाजी मानी पहना देना इन हजरात का एक मामूली खेल है, जिसकी बेशुमार मिसालें उनकी तफसीरों में मिलती हैं, और इस तमाम कदो काविश का मंशा सर सैयद अहमद खान के अल्फाज में यह है। ये जो उन्होंने सारी मेहनतें करी हैं ना, तो सर सैयद अहमद खान इसकी जो हिकमत लिखते हैं वो क्या है कि जब मोजज़ात को माफोक अलफितरत करार दिया जाए, जिसको अंग्रेजी जुबान में सुपर नेचुरल कहते हैं और इससे इनकार करते हैं, और इनका वुकू ऐसा ही नामुमकिन, जब मोजज़ात को माफोक अलफितरत करार दिया जाए, यानी यह माफोक अलफितरत चीज है जिसको अंग्रेजी जुबान में सुपर नेचुरल चीज कहा जाता है, और इससे इनकार करते हैं और इसका वुकूअ ऐसा ही नामुमकिन करार देते हैं जैसे कि कौली वादे का ईफा ना होना, या किसी ने कौली वादा किया और उसका जो है ना उसने वफा नहीं करी, और ऐलानिया कहते हैं कि किसी ऐसे अमर के वाकई होने का सबूत नहीं है जो माफोक अलफितरत हो और जिसको तुम मुअज्जा करार देते हो, और अगर बफर्ज महाल खुदा की कुदरत के हवाले पर उसको तस्लीम भी करें तो वो एक बेफायदा अमर होगा। ठीक है, यानी मोजज़ात को तस्लीम करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो कि अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ऐसा काम कर देना, कहते हैं ना भाई अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ऐसा काम कर देना, तो उसके ऊपर कहते हैं सर सैयद अहमद खान साहब कि इस तरह की बातें करने का कोई फायदा तो है नहीं, तो खामखा जो है वो क्यों इस तरह की बातें कर लो कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इसके बरखिलाफ उलमाए इस्लाम का मौकफ ये था कि मौजजात का वुकू अकली तौर पर कोई महाल नहीं है। हाँ, ये वाकयात खिलाफ आदत जरूर होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब अपने किसी पैगंबर की हक्कानियत हर आमी और अनपढ़ के सामने वाशगाफ करना चाहता है तो उनके हाथ पर ऐसे हैरत अंगेज खिलाफ आदत काम जाहिर कर देता है जिन्हें देखकर हर शख्स ये समझ जाए कि अल्लाह के इस पैगंबर को ताईद खुदाबंदी हासिल है। मगर चूंकि मगरब में नेचुरल साइंसेस का सिक्का चला हुआ था, इसलिए सर सैयद साहब वगैरह ये बात कहते हुए शर्माया करते थे। ठीक है, यानी अंग्रेजों से शर्म आती थी, जैसे हमें अंग्रेजों से शर्म आती है ना कि अंग्रेज के सामने जो है ना वो हम कुछ अरसा पहले तक तो हम अपना लिबास भी नहीं पहन सकते थे। ठीक है ना, हमें यानी कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी कि अपना लिबास वैसे पहन लेंगे, कुछ लोग तो ऐसे ना कि अपने घर में भी अपना लिबास नहीं पहनेंगे बल्कि वेस्टर्न ड्रेस ही पहनेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जी अपने घर में या अपने मुल्क में तो चलो शलवार कमीज और अरबी लिबास वगैरह पहन लेंगे, लेकिन जब यूरोप अमरीका ट्रैवल करेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही बन करके ट्रैवल करेंगे, या पता नहीं जहाज में कदम रखने के लिए भी जैसे कि कोया के जो जहाज का कैप्टन होता है ना वो खड़ा होता है दड़ख वो दरवाजे के ऊपर कि अगर आपने जो है वो देसी लिबास पहन करके आए तो हम आपको अपने जहाज में दाखिल नहीं होने देंगे आपको, या एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने देंगे। हालांकि गोरे ने भी कभी ऐसा काम नहीं किया होगा कि उसने जो है वो एयरपोर्ट में दाखिला बंद कर दिया होगा, लेकिन पता नहीं कोई जब सफर करने के लिए जाएंगे तो फिर जो है वही 3 पीस सूट, वही जो है इस किस्म का वेस्टर्न लिबास पहन करके जाएंगे। ठीक है, दफ्तर में तो ब्राउन अंग्रेज बैठे होते हैं ना, तो दफ्तर वाले तो अक्सर मना भी कर देते हैं कि नहीं ये आप जो है ना वो अंग्रेज का लिबास पहन कर आएंगे तब हम दफ्तर में आने देंगे, लेकिन एयरपोर्ट पर तो नहीं बैठे हुए होते, नहीं जहाज के सीढ़ियों पर तो नहीं बैठे हुए होते, तो फिर आपको क्या तकलीफ होती है? क्या वहां पर जो है वो शलवार कमीज या लिबास पहन करके नहीं जा सकते, इस्लामी लिबास नहीं पहन के जा सकते या इस मशरक़ी पहन, तो शर्म आती है ना भाई। अब सारा कसूर सर सैयद अहमद खान का, उनको शर्म आती थी, अरे भाई उनको भी आती थी हमें भी आती है, ठीक है ना, तो कसूर हमारा बराबर है असल में, इल्लत जो है ना कॉज सेम है, और असल मसला इल्लत का ही होता है, जब इल्लत जो है वो मुश्तरक है तो फिर उसके ऊपर हुक्म भी मुश्तरक ही लगता है। बात समझ आई ना? इल्लत, अगर इल्लत मुश्तरक है यानी सेम इल्लत है तो हुक्म भी एक ही लगता है। जैसे कि खमर, शराब जो होती है ना वो हराम है ना, तो असल शराब जो होती है वो तो अंगूर की होती है और मुनक्के की होती है, राइट, और किसी दूसरी क्या चीज होती है, खजूर की शराब होती है ना, असल तो वो शराब होती है। अब जो है वो विस्की तो ब्रांडी तो बियर तो पता नहीं क्या क्या शैंपेन, ये इनको क्यों आप हराम का ना करार देते हैं? ये तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में होती नहीं थी। तो भाई इल्लत मुश्तरक है, इसमें भी खमर होता है उनमें भी खमर होता है, इल्लत मुश्तरक हो गई ये भी हराम हो गई। तो अगर सर सैयद के अंदर यही इल्लत थी और हमारे अंदर भी यही इल्लत है, यानी यकीन का ना होना, कुरान और सुन्नत के ऊपर यकीन का ना होना, और जो है वो मरऊब होना उनके अफकार से, उनके तौर तरीके से, उनके जो है वो कामयाबियों से मरऊब होना, क्यों स्कूल भेजते हैं मरमर करके, पेट काट काट करके जो है वो इनके स्कूल भेजते हैं और इनकी जो है वो सारी चीजें जो है वो पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं, झूठ बोलना एक अलग बात है कि नहीं, हम तो दीन की खातिर पढ़ाते हैं, दीन की खातिर करवा दो, वो तो एक अलग मसला है, ठीक है ना, लेकिन बाकी तो भाई ये नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा, ऐसे भी है, तो मरूबियत तो मुश्तरक है ना फिर सर सैयद में और हम में, ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा फिर। तो कहते हैं कि कुदरत खुदा खुदाबंदी का ये, लेकिन कुदरत खुदाबंदी का ये करिश्मा मुलाहिजा फरमाइए कि जिस वक्त सर सैयद अहमद खान और उन जैसे दूसरे मुतजद्दीदीन नेचुरल साइंसेस की खातिर अम्बिया अलैहिस्सलाम के मौजजात का इनकार कर रहे थे और इस गर्ज से कुरान करीम की आयात पर तहरीफ व तावील की मशक की जा रही थी, ठीक उसी जमाने में साइंस की दुनिया में एक अजीम इनकलाब रूनुमा हो रहा था, न्यूटन की नजरिया के नजरियात नई तहकीकात की रोशनी में गलत साबित हो रहे थे, और आइंस्टाइन, ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब आ गए, तो आइंस्टाइन अपने इनकलाबी नजरिया इजाफत की दाग बेल डाल रहा था, जिसने साइंस के गुज़श्ता मफरूजात की काया पलट कर रख दी और इसकी बुनियाद पर 20वीं सदी में जिस एटमी साइंस का डंका बजा, उसने कानून कशिश और कानून इल्लत व मालूल को रद्द करके नेचुरल और सुपर नेचुरल की तफरीक खत्म कर डाली, ठीक है, चुनाचे अहदे हाजिर का एक अजीम और मुस्लिम साइंसदान सर आर्थर एडिंगटन लिखता है कि साइंस की तहकीकात से अशिया की किसी अंदरूनी जाती वला यनफक खासियत या माहियत व नौयत का पता नहीं चलता, ये किसी अंदरूनी जाती यानी ऐसी चीज जो ला यनफक का, ठीक है, कि जिसको जो है ना आप कर ही नहीं सकते उससे जुदा, तो साइंस इस किस्म का क्लेम करती ही नहीं है। और इसी तरह एक अहम नतीजा खारजी दुनिया में कानून इल्लत के खत्म हो जाने का ये निकलता है कि फितरत और फौकुल फितरत के दरमियान कोई वाजह फर्क बाकी नहीं रहता। अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर को जो है वो इन चीज़ों का पता भी नहीं होता, हम वही वो अभी तक न्यूटन ही साहब के साथ जो है वो लगे हुए, ठीक है, आइंस्टाइन जरा ज़्यादा एडवांस किस्म का वो बन जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और तो वो फिर जो जाते हैं उस फील्ड के अंदर तो फिर उन्हीं को पता चलता है, बाकी लोगों तक इसकी हवा ही नहीं पहुंच रही होती है। तो साइंस के मुसलमात से ये जबरदस्त इनकलाब किस तरह रूनुमा हुआ, इसकी मुख्तसर सरगजश्त हमारे दौर के मशहूर साइंटिस्ट सर जेम्स जीन्स की जुबानी सुनिए। तो ये इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास के अंदर, क्योंकि अभी ये मजमून आगे काफ़ी चल रहा है तो बाकी आइंदा के ऊपर रखते हैं। आप ऐसे अक्सर के साथ तो हम शेयर कर चुके हैं पहले ही, लेकिन जिन हजरात के साथ या ख्वातीन अगर सुन रही हैं तो जिनके साथ हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहम का वो मकाला तहरीक तजद्दुद का पस मंजर और उसकी फिक्री बुनियादें अभी तक शेयर नहीं की गई हैं, लेकिन वो शौक रखते हैं कि उसको पढ़ें, ठीक है? तो उनसे गुजारिश है कि वो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर इस फकीर से वो मांग लें, ठीक है? अगर आप मांगेंगे तब हम आपको वो भेज देंगे, तो आप भी उसको पढ़ें। बहुत ही ज़्यादा एनलाइटनिंग किस्म का वो रिसर्च पेपर है जो कि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक्चुअली 1964 में लिखा था, ठीक है? यानी इतने साल पहले, जब उनकी उम्र भी जो है ना वो कोई 25 साल के करीब होगी, उस वक्त उन्होंने वो मकाला लिखा था। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो यानी आई ओपनिंग किस्म का वो पेपर है, तो उसको ज़रूर से पढ़ना चाहिए अगर आपको शौक है और अगर आप जस्तजू रखते हैं, तो वो साजे से आप मांग सकते हैं, ठीक है? कोई सवाल या कोई और कमेंट वगैरह अगर है तो पूछ लीजिए या बता दीजिए। ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।